नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दिल्ली के समग्र विकास और जन आकांक्षाओं के संकल्प पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 8वीं विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत सभी राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के 20% अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिविल सेवा परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को सम्मानित किया और आज ईद के त्यौहार पर दिल्ली के जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में नमाज अदा की गई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी देते हुए श्रीमती गुप्ता ने बताया कि भेंट के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से दिल्ली के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे की मजबूती और जन आकांक्षाओं की पूर्ति के संकल्प पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन और सतत सहयोग से हम दिल्ली की प्रगति, समृद्धि और सुशासन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज 8वीं विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 23 से 25 मार्च तक आयोजित होगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र से पहले परिचालन और प्रक्रियात्मक तैयारियों का व्यापक निरीक्षण किया ताकि कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो सके। उन्होंने बताया कि इस सत्र में तकनीकी आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है और सभी सदस्यों की मेजों पर टैबलेट लगाए गए हैं जिससे उन्हें कार्यवाही और दस्तावेजों तक रियल टाइम पहुंच मिलेगी। श्री गुप्ता ने बताया कि सत्र की शुरुआत में वंदे मातरम का लाइव पूर्ण गायन भी होगा जिसकी पंक्तियां सदन की स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएंगी। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा विधान साथी नामक सदन के अंदर एआई सक्षम चैटबॉट भी पेश करेगी जो सदस्यों को विधायी कार्यों में शोध सहायता प्रदान करेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत सभी राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के 20% अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है जो अब बढ़कर 50% हो जाएगा। इसमें पीएनजी विस्तार के लिए सुगम सुधारों पर आधारित 10% आवंटन भी शामिल है। ये अतिरिक्त आवंटन रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, सब्सिडी वाली कैंटीन और राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। सरकार ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है और पश्चिम एशिया में तनाव के बीच सरकार के उपायों को मजबूत करते हुए लोगों से न घबराने का आग्रह किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शोधन संयंत्रों में घरेलू एलपीजी उत्पादन में वृद्धि की गई है। मंत्रालय ने कहा कि शहरी गैस वितरण एजेंसियों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। इसके अलावा प्रमुख शहरों और शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने की सलाह दी गई है। सरकार ने राज्यों से जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी की जांच के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 2025 पर देशव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 की शुरुआत की। यह अभियान प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, आउटडोर, डिजिटल और सोशल मीडिया के अंतर्गत चलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर अधिनियम 2025 से त्रुटियां, विवाद और अनुपालन लागत कम होगी।
इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम 2025 स्पष्ट रूप से 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा। ये सरल, निष्पक्ष और स्पष्ट है। इसमें जनता के लिए कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जो निश्चित रूप से भारत को एक कर अनुकूल देश के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी। इसके साथ कई और भी उपाय हैं, लेकिन उन पर चर्चा बाद में होगी।
मेनी मोर थिंग्स टू गो अलोंग विद इट, बट दैट्स फॉर अ बिट लेटर।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों से भेंट कर उन्हें सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सफलता दिल्ली की प्रतिभा, परिश्रम और संभावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सभी सफल परीक्षार्थियों ने अपनी अथक मेहनत और अडिग संकल्प से सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर दिल्ली का मान बढ़ाया है। वहीं श्रीमती गुप्ता ने विश्वास जताते हुए कहा कि ये सभी युवा जनसेवा को कर्तव्य मानकर संवेदनशीलता और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो आपके मन में चाव है कि आज अपने प्रोफाइल के साथ में, अपनी जॉब के साथ में, अपने दायित्व के साथ में जो सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा, वो अपने आप में एक असाधारण अनुभूति है। एक युवा फोर्स जब इस देश में आगे बढ़कर के जिम्मेवारियां उठाएगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप जब जब जहां जहां जाएंगे वहां बेहतरी लेके आएंगे, वहां विकास लेके आएंगे।
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU और सशस्त्र सीमा बल SSB अकादमी ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण और मान्यता को बढ़ावा देने तथा उत्कृष्टता की दिशा में काम करने के लिए नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अकादमिक शोध और सीमा सुरक्षा बलों की जमीनी स्तर पर व्यावहारिक आवश्यकताओं के बीच के अंतर को पाटना है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस साझेदारी के तहत SSB अकादमी में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को RRU अकादमिक मान्यता प्रदान करेगा। दोनों संस्थानों ने संकाय विशेषज्ञता, शिक्षण उपकरण और विशेष प्रशिक्षण सुविधाओं सहित संसाधनों के व्यापक आदान प्रदान के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की। पेशेवर विकास के लिए RRU अपनी अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और क्षेत्र आधारित कार्यशालाओं के माध्यम से SSB कर्मियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत एक सशक्त फार्मा अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। आज नई दिल्ली में एक अंग्रेजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित स्वास्थ्य सेवा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वैश्विक गुणवत्ता मानकों, स्वदेशी नवाचार और अनुसंधान को उद्योग से एकीकृत करने पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत का स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है, जो मुख्य रूप से आयात पर निर्भर प्रणाली से स्वदेशी क्षमताओं की प्रणाली की ओर अग्रसर हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन और महा मेडिटेक मिशन जैसी पहले प्रयोगशालाओं को नैदानिक अनुप्रयोगों से जोड़कर अनुसंधान तंत्र को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य इस क्षेत्र में शीर्ष वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो और निर्यात को बढ़ावा मिले। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज समस्त दिल्ली वासियों को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वन प्रकृति का अनमोल उपहार है और सभी के जीवन का आधार भी है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि वनों का संरक्षण करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर सभी वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण के संतुलन में अपना बहुमूल्य योगदान दें। जल शक्ति मंत्रालय 23 मार्च को नई दिल्ली में विश्व जल दिवस सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि जल के लिए उद्योग विषय पर आधारित ये सम्मेलन सतत जल प्रबंधन के लिए संवाद, नवाचार और सहयोग हेतु राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के 700 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज शुक्र बाजार चौक महावीर इनक्लेव पार्ट 2 में पिंक कार्ड बनवाने के लिए एक कैंप का आयोजन किया। इस अवसर पर श्री सूद ने बताया कि पिंक कार्ड महिलाओं की सुलभ और सुरक्षित यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वहीं कैंप में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर पिंक कार्ड बनवाए। दिल्ली के आनंद विहार स्थित विवेकानंद स्कूल में आज सड़क सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में सड़क सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना और युवाओं में जिम्मेदार रूप से परिवहन की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में कक्षा 3 से 12 तक के लगभग 4000 छात्रों और लगभग 100 स्कूलों के 500 से अधिक शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सड़कें केवल भौतिक संपत्ति नहीं है बल्कि लोगों, अवसरों और आर्थिक प्रगति को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण जीवन रेखाएं हैं। भारत की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में लगभग 1,46,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल है जो इसे विश्व के सबसे बड़े राजमार्ग से एक बनाता है। राजधानी में ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की जमीन अधिग्रहण लागत में दिल्ली के बकाए हिस्से के भुगतान को मंजूरी दे दी है। इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य दिल्ली को भारी वाहनों के दबाव से राहत देना और वायु प्रदूषण को कम करना है। साल 2018 में शुरू हुए ये एक्सप्रेसवे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली के चारों ओर एक तरह का ट्रैफिक सुरक्षा घेरा बनाता है। पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दोनों मिलकर दिल्ली के चारों ओर लगभग 135 किलोमीटर लंबे 6 लेन मार्ग बनाते हैं। इनकी वजह से ऐसे लाखों ट्रक और वाणिज्यिक वाहन अब शहर में प्रवेश नहीं करते। इससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है और प्रदूषण में कमी भी आई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonear.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर में आज ईद का त्यौहार हर्षोल्लास और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में नमाज अदा की गई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी संख्या में लोगों ने आज एकत्र होकर अमन, शांति और खुशहाली की दुआ की। यह त्यौहार रमजान के पावन महीने के समाप्त होने पर मनाया जाता है। रमजान के पवित्र महीने के बाद आने वाला यह त्यौहार भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है। इस दौरान रोजेदार 29 से 30 दिनों तक सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे आत्मा की शुद्धि और आत्म अनुशासन का विकास होता है। ईद कृतज्ञता और खुशी का दिन है जहां लोग अपने परिवारों और दोस्तों के साथ मिलते हैं। वहीं आज के दिन नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इसके साथ ही ईद के अवसर पर घरों में सेवैयां समेत कई पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका गुप्ता।
दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि कल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी कॉलोनी में सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लगभग 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। यातायात पुलिस ने बताया कि इसके चलते विशेष यातायात व्यवस्थाएं लागू रहेंगी, जिसमें बीपी मार्ग, सेवानगर बस डिपो, रेड लाइट, प्रगति विहार और जंगपुरा मेट्रो टी पॉइंट सहित कई स्थानों पर रूट डायवर्जन और प्रतिबंध रहेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि जेएलएन सर्विस रोड पर भी आवागमन सीमित रहेगा। राजधानी में आज दिन भर मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दिल्ली के समग्र विकास और जन आकांक्षाओं के संकल्प पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 8वीं विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत सभी राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के 20% अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिविल सेवा परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को सम्मानित किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।